لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر، أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فورٹین تھرٹی سکس کے عشر زینبیہ کی آج ٹینتھ مجلس، اور انشاءاللہ کل آفٹر ظہرین اربعین ڈے کو اس سلسلے کی الیون اور لاسٹ مجلس ہوگی. مگر لائک ایوری ایئر، لائک ایوری پلیس، یہ جو لاسٹ ٹو مجالس ہیں اس میں ایک پرابلم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میجورٹی آف مومنینز، میجورٹی وہ ان دو مجلسوں میں آتی ہے، اس سے پہلے والی مجلسیں انہوں نے نہیں سنی ہوتی، تو بعض اوقات ان کے لیے ٹاپک سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ان کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ چہلم کی رات یا شب اربعین، لیلۃ الاربعین، اور چہلم کے دن یہ کس ٹاپک پہ بات کی جا رہی. اگرچہ یہ نو دن سے بات ہو رہی اور اب ہم اس کے فائنل اسٹیجز میں، بہت ساری باتیں جو پہلے بیان ہو گئیں اگر وہ ذہن میں نہ ہوں تو یہ مجلس کبھی کبھار بلکہ اکثر آبجیکشنیبل ہو جاتی ہے کہ یہ آج کی رات کیا اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیے. اور میں آج کی اس دنیا میں، جو میرا اس سے پہلے دو مجلسوں میں یہ سبجیکٹ رہا ہے کہ ٹالرنس اور پیشنس بالکل ختم ہو کے رہ گیا. بھائی، اولاد والدین کی بات بھی سننے کو تیار نہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ عمل کرے، ایٹ لیسٹ ریسپیکٹ. قرآن نے کہا کہ اف نہ کہنا، لیکن یہ تیار نہیں، ٹالرنس نہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم، ٹالرنس نہیں. مرج تقلید سے ایک جاہل انسان کا جھگڑا، ٹالرنس نہیں. یہ تو اچھا ہے کہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا امام نہیں. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ مقداد ابن اسود کا جملہ، اور اگر ٹائم ہوا تو شاید کل میں اس جملے کو مزید ایکسپلین کروں. لیکن اب یہ ٹالرنس نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ہے. لا تقربوا الصلاۃ، ابھی آدھی آیت لوگوں نے سنی ہوتی ہے اور آبجیکشن شروع ہو جاتے ہیں. لکھنؤ میں جو ہمیشہ پیلے والی مسجد کے سامنے ہمارے جلوس پر اعتراض ہوتا تھا، بلکہ رائٹس ہوتے تھے، نوحے کا شیر پورا تو ہو جانے دو، حاکم شام لعین است، بس ہنگامہ شروع ہو گیا کہ آپ نے معاویہ کو لعین کہہ دیا. پیش او زینب حسین است، یہ دوسرا مصرع تو آنے دو کہ حاکم شام سے مراد یزید ہے. لیکن وہ جو غیروں کی ایک کریکٹرسٹک تھی کہ بات کو پورا نہیں ہونا، اعتراض پہلے کر دینا ہے، یہ اب ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا پرابلم، بہت سمجھ سمجھ کے بات کرنا پڑتی ہے. پھر بھی میں دو باتیں بالکل اپنے کانٹیکسٹ سے ہٹ کے شروع میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہی دو پوائنٹس پر آج ہماری مجلس ہوگی. جو لوگ فرام دا ویری فرسٹ ڈے مجالس سن رہے ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں، جو لوگ آج آئے ہیں اور آ رہے ہیں، پہلی بات، اربعین کربلا کے جہاد کا وہ اسٹیج जिसके अंदर सारा रोल लेडीज ऑफ अहलुल बैत मुखद्दरात इस्मत व तहारत का। और उस हवाले से भी मैं एक जुमला अक्सर कहता हूं, जनाब ज़ैनब कुबरा और जनाब उम्मे कुलसूम ने करबला के बाद जो जिहाद किया वो हमारे लिए कोई ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं। अली और फातिमा की बेटियां, इनकी रगों में वही खून है जो इमाम अली का खून, इनकी गिजा या इनका फीड वही शीर जहरा फातिमा जहरा का दूध है। तो ये तो जैसा भी जिहाद करें कम है। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहाद है उम्मे फरवा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहाद है उनकी छोटी बहन जनाब रबाब का, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहाद है उम्मे सलमा का। ये अली की बहुएं जो उम्मती घराने से ताल्लुक रखती, ना इनका बाप मासूम है ना इनकी माँ मासूमा, ना ये किसी आये तथहीर वाले घर में इनका बचपना गुजरा है, नो। लेकिन जैसा जिहाद इन्होंने किया, आपको कहीं पूरे इस करबला के बाद कोई फर्क नजर आता है इनके और जनाब ज़ैनब के जिहाद में? वो तो अकीदे के एतबार से हमको पता है कि ज़ैनब ज़ैनब, लेकिन जितने मसाइब आए, जितने मरहले आए, उसमें जनाब लैला, जनाब रबाब, जनाब उम्मे फरवा, अब ये लेडीज का, उन लेडीज का रोल जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसुम से हटकर, ये एक बात ज़हन में रख के मजलिस सुनिएगा, वरना आधी मजलिस में आप परेशान होंगे कि आज शब अरबईन किस सब्जेक्ट पे बात हो रही। नंबर एक। नंबर दो, हमारे पास हर मासूम की बहुत सारी जियारतें, और खास तौर पर आका हुसैन की तो हर ओकेजन की अलग जियारत, शब कदर की अलग जियारत है, ईद की अलग जियारत है, अरफा की अलग जियारत है, 15 शाबान की अलग जियारत है, 13 रजब की अलग जियारत है, आशूर की अलग जियारत, अरबईन की अलग जियारत, और हर शब जुमा पढ़ने वाली अलग जियारत, बहुत सारी जियारत है। मगर अरबईन की जियारत ओनली जियारत है जिसे साइन ऑफ मोमिन डिक्लेयर किया गया। ऑल्दो मुझे मालूम है कि वो जो हदीस है उसके अंदर जियारत अरबईन से मतलब है फिजिकली करबला की जियारत को जाओ, मगर चूंकि साथ में ये हदीस है कि जो फिजिकली नहीं जा सकता है वो ये जियारत पढ़ ले। तो मोमिन की 5 साइन, वो हदीस आप हर साल सुनते हैं, आज मेरे पास टाइम भी नहीं है। जियारत अरबईन, और जियारत अरबईन में आका हुसैन के पूरे जिहाद को, आका का जिहाद ओनली करबला नहीं है, कूफा और शाम भी हुसैन के जिहाद का एक पार्ट है। तभी ज़ैनब कुबरा का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल शरीकतुल हुसैन, पहला तो अकीला बनी हाशिम, दूसरा शरीकतुल हुसैन, कि यही एक ही जिहाद है। इस पूरे जिहाद को बहुत ही ज्यादा मुख्तसर करके, समराइज करके ज़ियारत अरबईन में कहा, ले यस्तनकज़ा इबादका मिनल जिहाद, हुसैन ने यह सारी कुर्बानी दी ताकि तेरे बंदों को जिहालत, ला इल्मी, इग्नोरेंस इससे निकाला जाए। अब ये एक दूसरा जुमला जहन में रखिएगा कि जब हुसैन के जिहाद का पूरा मकसद ये वल हैरत वल आला, क्योंकि अल्लाह को तो मालूम था ना कि 21st सेंचुरी में हर टर्म के मीनिंग लोग चेंज कर देंगे। अगर ये कहा कि हुसैन ने लोगों को जिहालत से, इग्नोरेंस से निकाला, तो कहीं कोई ये रिजल्ट ना निकाले, बस करबला कमीशन यह है कि कॉलेजेस बनाओ, यूनिवर्सिटीज बनाओ। तो आगे फौरन वजाहत भी आ गई, कौन सी जिहालत, जो आदमी को जलालत और गुमराही की जानिब ले जाती है, यानी दीन के इल्म की जिहालत। बहुत मुख्तसर टाइम नहीं है, उसमें भी मैंने 10 मिनट आपके और ले ली, बस ये दो बातें जहन में रखिएगा, चेलुम अरबईन हुसैन की वो वाली विक्ट्री का दिन जिसकी डिटेल कल जोहर की मजलिस में आएगी, वो करबला की खवातीन और लेडीज उनका रोल। नंबर दो, मकसद हुसैन करबला से कूफा, कूफे से शाम, अल्लाह के बंदों को दीन की जिहालत से निकालना। बस ये दो बातें सिर्फ उन लोगों के लिए जो आज की मजलिस में सवाब की खातिर आए हैं, लेकिन साथ में खुले कानों के साथ मजलिस सुनेंगे तो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पे बात हो रही है। अब आइए कल रात को बात कहां पहुंची। कुरान करीम की जिन दो आयतों की मैंने तिलावत की, बल्कि चार दिन से जो हमारा टॉपिक चल रहा था सूरतुल अनआम आयत 151, 152, 153 और सूरह नूर की वो आयत के फइन्नहु यामुरु बिल फहशाए वल मुनकर, शैतान की शरीयत क्या, ये दो बातें जो चार दिन से आ रही थी, आज उसको बयान करने का वक्त नहीं है। शैतान शेमफुल एक्टिविटीज, इनडिसेंट एक्ट, बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती को प्रोमोट करता। और अब यहां पे ये बात कि आखिर इससे बचने का तरीका क्या है, कल रात की जो बात आई थी कि इस्लाम ने इसका क्या तरीका बताया, आज जो आयत मैंने तिलावत की है, दो आयतें तिलावत की है। पहली आयत वो है जिसके बारे में हमारे उलमा तो नहीं कहते हैं लेकिन एक आम नजरिया कि इसमें अगर जेर जबर पेश की गलती कर दी जाए तो आदमी काफिर हो जाता। हमारे यहां तो महाराजे का फतवा है कि बाई मिस्टेक अगर गलती तो आदमी शायद गुनाहगार तो हो लेकिन काफिर नहीं बनेगा। ये दो तीन आयतें कुरान की है ना, जैसे सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अनअमता को अनअमतो पढ़ दे, माने कहां से कहां चले गए, मैंने नेमतें नाजिल की, कहा ये कुफर के करीब इंसान को पहुंचा था। इन नमा यक्षल्लाह मिन इबाद इल उलमा, यक्षल्लाह अगर यक्षल्लाहो पढ़ दे, आयत जिस तरह मैंने तिलावत की यानी कुरान में है वो ये, याद रखो अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा ओनली। आयत शुरू हुई है इन्नमा से, इन्नमा युरीदुल्लाह, जहां ये लफ्ज इन्नमा आ जाए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारे तीन मौला, सिर्फ तीन, इन्नमा का मतलब ओनली सिर्फ, इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादेहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले जो हैं वो सिर्फ उलमा। नॉन आलिम कितनी ही बातें कर रहा है लेकिन खौफ खुदा उसके दिल में नहीं। अलबत्ता अगर यहां सबर के बदले पेश आ जाए तो तर्जमा होगा अल्लाह डरता उलमा से कुफर। अलबत्ता जैसे हमारे मोमिनीन तो बहुत डरते हैं लेकिन अब इस पर हम आएंगे। ये आयत और इसके साथ कौन सी आयत, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, जन्नत सिर्फ उसको मिलेगी जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा कि मुझे अपने एक एक एक्शन का जवाब देना। यहां दुनिया में तो हर आदमी आजाद है ना, और अगर आप किसी ऐसे मुल्क में पहुंच जाए जहां पर्सनल आजादी को और फ्रीडम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाए, लॉ भी आपके साथ हो, कौन आपको रोक सकता, वालिदैन की तौहीन करें, मोमिन को गाली दें, पड़ोसी के बारे में दो चार जुमले आप लिख दें, यूट्यूब तो है इसी चीज का नाम, इंटरनेट और फेसबुक तो है इस चीज का नाम, उलमा की बेइज्जती करें, मराजे के चिथड़े उड़ा दें। अभी तो आजाद है ना, हाथ भी चल रहे हैं, जबान भी चल रही है, जो हम अपनी अगर लखनऊ की औरतों की जबान में कहें तो लल्लो भी बहुत ज्यादा चल रही है, कौन रोकेगा इंसान को। लेकिन जिसे ये पता है कि एक एक लफ्ज जो हमारी जबान से निकलता और एक एक इशारा जो हम हाथ से करते हैं, इसके लिए कयामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देना। वह अम मन खाब अमकाम रब, देखिए एक रिवायत हमारे यहां बहुत पढ़ी जाती और बहुत ज्यादा मारिफत वाली रिवायत है, दिल भी चाहता है कि बहुत ज्यादा पढ़ो, और वो ये है कि शहजादी के घर में रहने वाली ये कनीज फिज़ा, इस घर में रहने के बाद नतीजा ये निकला कि करबला के बाद सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कुरान से गुफ्तगू करती थी। 40 साल फिज़ा ने अपनी कोई बात नहीं कि जो मसला, यानी ये नहीं है कि दीन के मसाइल में कुरान, खाना चाहिए तो कुरान की आयत से मांगेंगे, सवारी चाहिए तो कुरान की आयत की तिलावत करेंगे, कहीं सफर करना है तो कुरान की आयत, अब ये बहुत मारिफत वाला वाकया है कि अहले बैत के घर में आकर आम इंसानों मर्दों की हालत कोई कंबर बनता है, औरतों की हालत फिज्जा बनती है। ये अहले बैत का घर है जहां कुरान नाजिल हुआ। ये अहले बैत हैं जो नोके नजा पे कुरान पढ़ा करते हैं। दुनिया आके इनको ये हमें कुरान सिखाए, लेकिन जनाब फिज्जा का मारिफत वाला वाकया, उसके अंदर एक बहुत अहम जुमला है जो लोग मिस कर जाते हैं, या मिस तो नहीं करते लेकिन जब वक्त आता है तो भूल जाते हैं, कि जिस रावी ने जनाब फिज्जा का वाकया कोट किया, जो वाकया मैं मिंबर से पढ़ता हूं उसमें ऑलमोस्ट 45 आयतें हैं, यानी 45 सवालात हैं रावी के, और शहजादी फिज्जा ने कुरान के जरिए से जवाब दिया। तो उसमें यह है कि जब आधी बात हुई थी, आधी बात, तो एक बार रावी ये स्टाइल समझ नहीं पाया कि आखिर हर चीज कुरान से, मजहबी और दीनी बातें नहीं। भाई ये पूछा कि आप यहां क्यों बैठी हैं, बता दिया कि मैं रास्ता भूल गई, ये भी कुरान से पढ़ा। अच्छा आप कहां से आ रही हैं, अपना घर भी बताया कुरान से। अच्छा आप कहां जा रही हैं, अपना डेस्टिनेशन भी बताया कुरान से। अरे आप घर से निकली क्यों थी, अपने पर्पज और जर्नी भी बताया तो कुरान से। वो पूरी रिवायत मुझे याद है लेकिन आज वैसे ही टाइम बहुत कम है। तो आधा जब वाकया हुआ तो रावी एक मरतबा जरा सा घबरा गया कि आखिर आप हर चीज कुरान से क्यों बता रही। तो सूरह काफ की आयत की तिलावत की, वमा युल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मैं इसलिए हर चीज कुरान से कह रही कि वमा युल्फिज़ु, जो लफ्ज मेरी जबान से निकलता है, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, उसे नोट करने वाला एक मौजूद है, रोजे कयामत उसके बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा। अब मैं खुद से कुछ कहती ही नहीं, मैं सारा अल्लाह ही का कलाम पढ़ती हूं, अल्लाह अपने कलाम पे तो नहीं पूछेगा ना। तो अब ये जो है जनाब फिज्जा का कुरान पे कमांड, मगर एक बहुत ही अहम प्रैक्टिकल मैसेज, तुम्हारी जबान से जो लफ्ज निकलता है कयामत में उसका हिसाब देना। जो किसी को एक गाली दी, जो किसी के साथ एक बदअखलाकी की, जो किसी पे एक लानत भेजी, जो किसी पे एक इल्जाम लगाया, जो किसी की एक तौहीन की है, देख लीजिए आजकल बच्चों के और नौजवानों के फेसबुक को, देख लीजिए आज जाके ट्विटर को। हमें दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, हमें तो है कि आले मोहम्मद ने अपने मानने वालों को एक सलीका दिया, एक तहजीब थी, एक कोड ऑफ प्रैक्टिस दिया, एक स्पिरिचुअली उनको ताकतवर किया है। हम उस लैंग्वेज में बात कर ही नहीं सकते हैं जिस लैंग्वेज में हमारा सामने वाला बात कर रहा। बाज़ औक़ात तो लोग कहते हैं ना कि मौलाना ये तो हमारा रिप्लाई है, उसको भी तो देखिए उसने क्या कहा है। आले मोहम्मद ने ये हमें सिखाया ही नहीं है। जब मुआविया ने फुरात दरिया पे कब्जा किया, यानी ये सीरिया की बात है, सिफीन पानी बंद कर दिया, और जब मौला के लश्कर ने दोबारा दरिया का कब्जा हासिल किया, कैप्चर किया, मौला के शियों ने कहा ना मौला अब तो हमें राइट है इस पे पानी बंद करने का, स्टार्ट इसने किया था। पूरा वाकया नहजुल बलागा में भी है मौला का खुतबा, मौला हमने पानी नहीं बंद किया, पहले उसने बंद किया। तो इमाम ने कहा अगर तुम भी वही करोगे तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया। वो जहन्नम वाले को फॉलो कर रहा है वो ये कर सकता है, तुम कसीम जन्नत और नार को फॉलो कर रहे हो तुम ये नहीं कर सकते हो। जब मुआविया जैसे के लिए मौला ये जुमला कह दे तो हमारे उलमा, हमारे मराजे, हमारे खुतबा, हमारे मोमिनीन एक दूसरे के झगड़े फेसबुक ट्विटर, ये आले मोहम्मद का तरीका नहीं है। और इससे वही आदमी बचेगा जो मन खाफ मकाम रब्बी, जिसके दिल में ये कंसेप्ट हो कि एक दिन अल्लाह के सामने जाकर अपने एक एक एक्शन का और अपने एक एक लफ्ज का जवाब देना। कयामत के दिन ऐसा नहीं है कि ओवरऑल हमारी लाइफ के बारे में बस एक समरी निकाल के सवाल होगा, एक एक अमल आपका, माल हाजल किताब ला युगादिरु मिन्हु कबीरतन वला सगीरतन वला कबीरा, सूरह काफ की आयत, आदमी अपना नामा अमाल देख के घबरा जाएगा। ये कैसा नामा अमाल है जिसमें मेरा एक एक एक्शन लिखा, उसमें ये भी लिखा है कि आज सुबह जब आप वॉशरूम में गए थे तो कब आपने राइट पैर पहले बढ़ाया और कब लेफ्ट पैर पहले बढ़ाया, जो आप भी भूल गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1993 के अंदर 3 जनवरी को जब आप वॉशरूम में गए थे तो आपने कौन सा पैर आगे बढ़ाया था, आप बता सकेंगे? उस किताब में लिखा। और इसका जवाब देना है रोज कयामत। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब ही वह नहन नफ्स अनिल हवा, कयामत से डरा और अपने नफ्स को गुनाहों से रोका। वह इन्नल जन्नत ही अल माहवा, यह कुरान ने फैसला कर दिया जन्नत उसी को मिलेगी। जन्नत खौफ़े खुदा, बस ये हमारा कल रात का यहां तक हमारी मजलिस पहुंची थी कि खौफ़े खुदा वो चीज है जो आदमी को खास तौर पर आज की 21st सेंचुरी में गुनाहों से रोक सकती, और कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आप आजाद हैं। आजकल एक फ्रीडम है, आज सिर्फ अगर अंदर से आपके इनर के अंदर एक ब्रेक लगा हो तो आप गुनाहों से रुकेंगे, कोई गुनाहों से नहीं रोक सकेगा। और यही खौफ खुदा पैदा करने के लिए इस्लाम ने कई तरीके बयान किए, और उनमें से एक बहुत अजीब तरीका, बहुत जल्दी इस पे बात कर रहा हूं। शुरू में जो दो बातें मैंने कही ना, उनमें पॉइंट नंबर 1 अब आ रहा, बेहयाई अशेमफुल एक्ट से बचना, खौफ खुदा पैदा करना। शादी का इदारा, ये जो इंस्टीट्यूशन इस्लाम ने बनाया है ना मैरिज का, ये कोई इंजॉयमेंट या प्लेजर के लिए नहीं है, वो तो साथ में इंसान को जिंदगी का एक मजा मिलता है, वो एक बोनस में है, लेकिन इसका मकसद ही है कि सबसे पहले इंसान उन गुनाहों से बचे जो बेहयाई की कैटेगरी में आते हैं। अब वक्त नहीं है, सेकंड लास्ट मजलिस है, और कल तो खैर हमारा सब्जेक्ट कुछ और बन जाएगा, लेकिन बहुत ही मुख्तसर, यूजुअली हमारे यहां शादी के मौके पे जब निकाह सेरेमनी होती है खुतबा पढ़ा जाता। शिया फिका में खुतबा निकाह पढ़ना वाजिब नहीं, लेकिन एक खुतबा पढ़ा जाता है, और उसमें भी यूजुअली उलमा वो खुतबा पढ़ते हैं जो हमारे 9th इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह के मौके पे पढ़ा था। यूजुअली तो यही है, कम से कम इंडिया पाकिस्तान में तो 95% निकाह में वो, और उसके अंदर बहुत शॉर्ट, अल्लाह की तारीफ, रसूल आले रसूल का तस्किरा, फिर सिर्फ एक जुमला निकाह की फजीलत के बारे में। अब देखिए यहां पे मैं डर रहा था कि लोग कहेंगे आज अरबईन की रात आप किस सब्जेक्ट पे जा रहे हैं, एक जुमला खाली इमाम ने कहा, अम्मा बात फकद कान मिन फज़लिल्लाह अलल अनाम अन अग्नाहुम बिल हलाल अनिल हराम फकाल वान के हुलैया मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। इमाम ने निकाह की फजीलत के लिए कुरान की आयत कोट की, लेकिन उस आयत से पहले निकाह का इंट्रोडक्शन कराया, अम्मा बात फकद कान मिन फज़लिल्लाह, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का फजल है, अन अग्नाहुम बिल हलाल, तुम्हें निकाह की शक्ल में एक हराम एक हलाल तरीका अता किया, अग्नाहुम बिल हराम, ताकि तुम्हें हराम की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े। ये निकाह दिया इसलिए गया, बेहयाई बेगैरती शेमफुल एक्ट इनडिसेंट एक्टिविटीज, इसमें सबसे पहले जो गुनाह थे, मैं आज की रात मेंबर पे उन गुनाहों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये निकाह, यानी निकाह से मतलब ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन, इसके जरिए आदमी उन गुनाहों से अपने आप को बचा सकता, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी नामहरम और बेपर्दा औरत को देखने की, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी गैर शरई एक्टिविटी में एंगेज होने की, टाइम भी कम है, आज की रात बड़ी मुकद्दस रात। अब ये ऐसा इदारा बनाया इस्लाम, और जैसा कि इमाम मासूम ने फरमाया कि हस्बैंड और वाइफ का बेहतरीन रिलेशन वो जहां दोनों एक दूसरे को अल्लाह का खौफ दिलाएं, फेयर ऑफ अल्लाह पैदा करें। टाइम भी नहीं है और बातें भी बहुत अहम है, तो बहुत ही शॉर्ट, शहजादी कौनैन की शादी हुई, और जब मौला, अब ये कुछ लफ्ज इमाम और रसूल के लिए अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वो हमारे लिए रोल मॉडल, इसलिए उन्होंने खुद ये मिसालें हमारे सामने रखी, भाई देखिए, शादी के बाद जब मौला शहजादी के पास पहली बार गए, तो हर आदमी जो शादी के बाद इस स्टेज से गुजरता है वहां कोई विटनेस नहीं होता, खुद इमाम ही ने तो ये बताया ना। तो जब इमाम उस कमरे के हालात हम तक पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहा हूं कि जब पहुंचे तो देखा कि शहजादी की शादी हुई है। अच्छा ठीक है, निकाह पहले हुआ, रुखसती कुछ टाइम के बाद हुई, लेकिन रुखसती के बाद। अब जब पहुंचे तो देखा कि शहजादी कुछ परेशान। अब ये मौला और फातिमा की बातचीत उनके लिए नहीं है, हमारे लिए। सवाल किया, बिनते रसूल इस वक्त आप परेशान क्यों नजर आ रही? शादी के फौरन बाद तो इंसान की जिंदगी का, अब वही शबे चेलुम, ये जुमले अच्छे भी नहीं लग रहे। इंसान की जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का मरहला होता वो पहली रात, शौहर और बीवी जब एक दूसरे को देखते हैं। तो शहजादी ने जो जुमला कहा, मैं रिवायत को बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, जो जुमला कहा वो ये था कि आया अबुल हसन, मैंने 9 साल अपने बाबा के घर में गुजारे। अच्छा ये तो हमें पता है कि फिर शादी के बाद 9 साल शहजादी ने शौहर के घर में गुजारे, टोटल एज 18 है, बिल्कुल एग्जैक्टली 2½, 9 इधर 9 उधर। लेकिन उस वक्त तो अभी स्टार्टिंग है, कहा कि जब मैं बाप के घर में थी तो बाप के घर में मेरे पास जरूरत का सारा सामान था, और जब यहां पे आई तो मेरे बाबा ने कुछ सामान दिया जो बहुत से लोग जहेज के लिए एक एक्सक्यूज लेकर आते हैं, मगर वो तो जो हमारा कल हमारे जोर की जो मजलिस है उसका ये सब्जेक्ट, काम अपनी मर्जी का करते हैं और उसको जो है थोड़ा सा रिलीजियस बना देते हैं कि जी वो रसूल खुदा ने भी तो अपनी बेटी को जायज दिया है, ये आज का सब्जेक्ट नहीं। वो कितना कम था, सिंपल कहा कि बाबा ने ये सामान दिया, चक्की है, कुछ बर्तन है। तो मैंने सोचा, अब देखिए शहजादी अली से कह रही है, अली के लिए या हमारे और आपके लिए? शहजादी अली से कह रही है कि अबुल हसन, बाप के घर में मेरी जिंदगी का एक स्टेज, शौहर के घर में जिंदगी का दूसरा स्टेज, फिर मैं कब्र में जाऊंगी तो कब्र हमारी जिंदगी का तीसरा मरहला। जब पहले स्टेज के लिए हमें जरूरी सामान मिला, सेकेंड स्टेज के लिए बाबा ने यह सामान दिया, तो कब्र के लिए भी तो हम कुछ सामान जमा करें। आइए अबुल हसन, हम और आप आज की रात नमाज पढ़ते हैं। और दोनों ने स्टार्ट किया दो दो रकत नमाज। अच्छा दो दो रकत तो मैं अपने और आपके लिए कह रहा हूं, आप कहेंगे कि हमारी लाइफ की एक ही रात थी, वो भी आज मौलाना ने छीन ली, तो आपके लिए सिर्फ दो रकत नमाज। मौला और फातिमा ने पूरी रात नमाज में गुजारी, और नमाज के लिए हर मोमिन को पता है, मैंने भी कल रात पढ़ा, इन्ना सलात तना अनिल फाशाए वल मुनकर, चौथे इमाम का वाकया, जहन्नम की आग का खौफ। तो नमाज क्या है? फियर ऑफ अल्लाह दिल में पैदा करती। कहां से अली और फातिमा की जिंदगी? अच्छा अली और फातिमा कोई दो अलग चीजें नहीं है, एक ही नूर के टुकड़े। ये हमारे और आपके लिए है कि देखो, फियर ऑफ अल्लाह या खौफ खुदा नमाज से भी पैदा होता है, वो भी एक जरिया है, और शादी के जरिए भी। शादी का मकसद ही यह है कि शौहर और बीवी एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, मगर किस चीज के लिए? एक तो होता है मॉर्गेज, मकान मॉर्गेज पे लिया, शौहर की सैलरी से घर भी चले, मॉर्गेज भी, ये मुश्किल होता सपोर्ट। शौहर भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, वॉलंटियरिंग, शरीयत उसको मजबूर नहीं करती, जिंदगी के बाकी सारे कामों में सपोर्ट होती। मगर ये सपोर्ट खाली जिंदगी में नहीं आए, कब्र में भी एक दूसरे की सपोर्ट करें, कयामत के लिए भी एक दूसरे की सपोर्ट करें, जन्नत के लिए भी एक दूसरे की सपोर्ट करें। शौहर कभी अगर रास्ते से हटे तो बीवी उसको अमरे बिल मारूफ करके रोक दे, बीवी अगर रास्ते से हटे तो ये शौहर की ड्यूटी बन जाएगी। और चूंकि यहां पे बीवी का रोल ज्यादा अहम है खौफ खुदा पैदा करने के लिए, एक सवाल इमाम ने किया था ना कि जब निकाह होता है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो हम लोग हमारे उलमा निकाह पढ़ते हैं, तो हमेशा निकाह स्टार्ट लड़की की तरफ से होता, लड़का तो सिर्फ एक जुमला कहता है कि कबिल तो मैंने कबूल किया, ऑफर लड़की की तरफ से होती। इमाम ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है? जबकि औरतों में या लड़कियों में शर्म ज्यादा होती, उसका जवाब भी दिया आज आज की मजलिस शबे अरबईन। अहले बैत खास तौर पर आका हुसैन के अजवाज, उनके हवाले से बात करना है तो ये थोड़ा सा मौजू उसको जहन में रख के कर रहा हूं, लेकिन पूरी मजलिस उस पर नहीं पढ़ सकता। तो अब उसी तरह इमाम ने एक सवाल यह किया जैसे वो सवाल किया, उस तरह का एक सवाल मैं कर रहा हूं कि अब अली और फातिमा, अली ने फातिमा से नहीं कहा कि नमाज से हमको आगाज करना है, फातिमा ने अली से कहा। ना अली को जरूरत है फातिमा की नसीहत को, ना फातिमा को जरूरत। यह है हमारे और आपके लिए एक मैसेज कि बीवी का रोल सबसे अहम यह है कि वो अपने शौहर के दिल में खौफ खुदा पैदा करे और घर के माहौल को ऐसा बनाए कि जहां फहाशी बेहयाई ये गुनाह ना होने पाए। मगर इसके लिए एक शर्त, और वो ये है कि बीवी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगी, चाहे ये मौजू आपको अच्छा लगे कि अच्छा ना लगे। मगर आज के दिन सिर्फ दो बहुत छोटी सी रिवायतें पढ़ रहा हूं। हाँ, पहली वाली रिवायत है तो बहुत छोटी, लेकिन मेरा स्टाइल ऐसा है कि बात लंबी हो जाती है। शायद एक लफ्ज जो लोग अक्सर मजलिसें सुनते हैं उनके लिए एनफ हो और वो कहें कि मौलाना बाकी वाकई की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसका डायरेक्शन या इसकी स्पीड, अच्छा साद इब्न माज। देखिए आज भी जन्नतुल बकी में जब हम जियारत को जाते हैं तो ये तो आर्गुमेंट है कि शहजादी फातिमा की कब्र कहां, रोजा रसूल में है या जन्नतुल बकी में। चले जन्नतुल बकी में कहां, दो रिवायतें बयान की जाती, लेकिन एक रिवायत कि वो रोजा रसूल में है तो जिस कब्र को इस वक्त बकी में फातिमा की कब्र कहा जाता है, फिर वो किसकी कब्र है, फातिमा बिनते असद की। लेकिन अगर ये रिवायत सही है कि शहजादी जन्नतुल बकी में दफन है और वो जो चार इमामों के बराबर कब्र है वो शहजादी की, तो फातिमा बिनते असद की कब्र कहां है फिर। वो कहा जाता है कि एंड ऑफ बकी, जो एक छोटी सी बाउंड्री वॉल के अंदर तीन कब्रें हैं, अब स्टोन निकाल दिया गया एक का, अब दो रह गई। तो खैर कहा कि वहां पे है बिनते असद, फातिमा बिनते असद बकी के स्टार्टिंग में है कि बकी के एंड में, ये इख्तलाफ। मगर ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है, नो डिस्प्यूट, कि जिसे फातिमा बिनते असद की कब्र कहा जाता उसके बराबर उनके साइड में साद इब्ने मास की कब्र। साद इब्ने मास रसूलुल्लाह के इतने बड़े साहबी, दो जुमले बस काफी हैं इनके लिए। एक रसूल की यह हदीस क्या है, साथ कयामत के दिन तुम्हारी शफात से तुम्हारी इतने गुनाहगार जन्नत में जाएंगे जितने कबीला मजर और रबिया की बकरी के जिस्म पे बालों की तादाद, पूरे कबीले की बकरियां और तमाम बकरियों के टोटल बाल, इतने गुनाहगार तुम्हारी वजह से जन्नत में जाएंगे, तुम उनकी सिफारिश करोगे। और एक मौला का जुमला जो मैं कहता हूं इससे भी बड़ा जुमला, वक्त होता तो उसको समझाता लेकिन खाली जुमला सुनना ही काफी। मौला फरमाते हैं कि अगर साद रसूलुल्लाह के बाद जिंदा होते तो हम अहले बैत का हक कोई छीन नहीं सकता था, हम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता था। अली कह रहे हैं साद के बारे में जो गैर मासूम है, साद इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, वो रसूल की जिंदगी में शहीद हुए हैं, बल्कि खंदक की लड़ाई में एक ही मुसलमान तो शहीद हुआ, वो साद इब्ने माज़ वहां मैदान में शहीद नहीं हुए, जख्मी हुए, मदीने के रसूल की मस्जिद में लाए गए, वहां शहीद हुए। जब उनका जनाजा उठा तो पैगंबर ने 70 टाइम्स अल्लाह अकबर कहा था ना स्टार्टिंग, या रसूल अल्लाह नमाज जनाजा में एक अल्लाह अकबर, चले रोजाना की नमाज में सुन्नत है 7 अल्लाह अकबर, जनाजे में एक है 70। कहा कि जैसे ही मैं नमाज शुरू करता था आसमान से 1000 फरिश्तों की एक जमात आती थी, मैं अल्लाह अकबर कहता था, दूसरे हजार, तीसरे हजार, 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने टर्न बाई टर्न क्या हुक्म दिया, आज आसमान की इबादत बंद करो, जमीन में जाके इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। तुम्हारी आसमान की नमाजों से ज्यादा साथ की नमाज जनाजा की फजीलत। साद इब्ने माज अपने हाथ से पैगंबर ने इन्हें बकी की इस कब्र में उतारा जिसका अभी मैंने रेफरेंस दिया। پہلی بار اسلام میں یہ سنت سات کی نماز جنازہ میں, سات کی تشییع جنازہ میں آئی تھی. اس سے پہلے یہ تھا کہ جنازہ اٹھاؤ, ایک طرف سے جنازے کو کندھا دے دو, انف. سات کی کا جنازہ پہلا جنازہ تھا, پیغمبر نے چاروں طرف سے جا کے سات کے جنازے کو کندھا دیا. کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی رائٹ پر جاتے ہیں, کبھی لیفٹ پہ جاتے ہیں. یا رسول اللہ, آج آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ آج سے اسلام میں یہ سنت ہے, نہیں. کہا کہ سات کے جنازے کو کندھا دینے, جبرائیل و میکائیل آئے ہوئے ہیں, وہ آگے جاتے ہیں تو میں پیچھے آتا ہوں, وہ پیچھے آتے ہیں تو میں آگے جاتا ہوں, وہ رائٹ پر جاتے ہیں میں لیفٹ پہ آتا ہوں, وہ لیفٹ پہ جاتے ہیں میں رائٹ پہ آتا ہوں. سات کے قصیدے اسی وقت پڑھے جا رہے ہیں جب جنازہ اٹھا ہوا ہے, مگر قبر میں دفن کر کے پیغمبر آئے, چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, قبر پیچھے ہے, پیغمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں, مڑ کے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ, اب سعد کی موت کو یاد کر کے آپ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں, سعد نے ابھی مجھے پکارا اور اس طرح سے آواز دی. یا رسول اللہ, کس طرح آواز دی؟ کہا ابھی میں بقیع کے گیٹ سے باہر نکلا تھا پہلا قدم, اور قبر کی دیواریں بڑی تیزی سے آگے بڑھی, سعد کو اپنے درمیان لے کر فشار قبر کا عذاب دیا. سعد کی ہڈی میں ہڈی داخل ہو گئی, اس طرح ان کو دبایا گیا, فشار قبر کا عذاب. اعاذنا اللہ منہ, اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. یہ سعد ابن معاذ, کہا کہ اس نے تکلیف کی شدت سے مجھے پکارا, اس کی حالت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ, اتنا عظیم صحابی جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کو جنت میں لے کے جائے گا, عذاب قبر اس پر بھی آیا اور اتنا جلدی آیا. ہمارے مرنے والوں کو تو اللہ گریس دیتا ہے نا, ایک رات روک دیا جاتا ہے عذاب, شاید کوئی صحیح نماز وحشت پڑھ لے. سعد کو تو ابھی پیغمبر قبرستان بقیع کے اندر ہیں, جیسے ہی قدم باہر نکالا, یا رسول اللہ وائے, پیغمبر نے کہا انہ فی خلق ما اہل سوا, بہترین میرا صحابی سعد ہے. انبیاء تک قیامت کے دن سعد کا مرتبہ دیکھ کے رش کریں گے. لیکن بس ایک خرابی تھی کہ اپنے بیوی کے ساتھ بہت ہی بد اخلاق تھا, روڈ, یعنی کوئی غالم گلوچ نہیں, نعوذ باللہ, کوئی حرام کام نہیں. لیکن بعض لوگ ہیں باہر بہت ہی پولائٹ ہوتے ہیں, ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے, گھر میں آتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو. چیلوم کی رات ہے اس لیے میں اس کو مزید نہیں بتا رہا, ورنہ الٹا بھی ہوتا. باہر ہر ایک سے لڑنے کو تیار, باہر جاؤ جلال دے کی, بیوی کے سامنے بھیگی بلی بن کے پہنچتے ہیں. لیکن اب ایسے بہت کم نظر آتے ہیں, زیادہ تر تو یہی دنیا تعریف کرے گی. پہلی سب کے نمازی بھی ہوں گے, لیکن بیوی سے پوچھو کیا زندگی کو عذاب میں ڈالا ہوا. اتنا عظیم صحابی, میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سعد کے فضائل کیسے آپ تک پہنچاؤں. مولا کہہ دیں کہ اگر وہ ہوتا تو ہمارا حق کوئی غصب نہ کرتا, مگر عذاب آیا اس لیے, گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا. یہ گھر اسلام میں, یعنی یہ فیملی لائف اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب شوہر کا, ایسے لوگ ہیں آج بھی, حتیٰ یہ کہ اس ویسٹ میں بھی, وہ ہماری شریف بچیاں جو قانون سے مدد لے کے ایسے لوگوں کو لیسن ٹیچ کر دیتی ہیں, کر سکتی ہیں, مگر کچھ فیملی بیک گراؤنڈ, کچھ خوف خدا, کچھ اپنا گھر ان کو نہیں توڑنا. وہ بیچاری ٹالرنس سے کام لیتی ہیں, مگر اس کا مقصد یہ نہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, واجبات سے روکتے ہیں بیوی کو کہ نہیں. دو چیزیں بہت سامنے ہیں, نمبر ایک حجاب, حجاب سے روکنے والے شوہر ہیں, نمبر دو صلہ رحمی, باپ کے گھر نہیں جانا, ماں کے گھر نہیں جانا, بھائی کے گھر نہیں جانا, یہ واجبات ہے اس کے لیے, لڑکی کے لیے, یہ اس کے رشتہ دار ہیں. تو خیر, بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ گھر, اور اصل جو یہ جملہ یاد رکھیے, یہ کل ظہر کی مجلس میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا. اب یہ فیملی لائف تو اتنا بھی میں نے پڑھا تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے, لیکن میرے سبجیکٹ کا حصہ ہے. گناہوں سے روکنے کے لیے خوف خدا, اور خوف خدا یہ نماز پیدا کرتی ہے, یا ایک اچھی فیملی لائف یہ خوف خدا پیدا کرتی. بیوی نمازی ہو شوہر کو نماز کے راستے پہ لائے گی, شوہر نمازی ہو بیوی کو نماز کے راستے پہ لائے گا, خوف خدا پیدا ہوگا, اور شیطان اس کو برداشت نہیں کرتا. خوف خدا ہمارے دل میں ہو, یہ شیطان کیسے برداشت کرے گا؟ کیونکہ خوف خدا اکیلے کوئی چیز نہیں ہے, وہ پھر ہمیں گناہوں سے روک دے. تو شیطان کی ساری زندگی کا مشن ختم ہو جائے گا اگر خوف خدا ہو. وہ نماز کو بھی تباہ کرے گا. پہلے کوشش کرے گا ہم نماز نہیں پڑھنے پائیں, और अगर पढ़ ही ले नमाज तो गलत नमाज पढ़े। अब देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैं कोई टोंटिंग नहीं कर रहा, किसी पे एतराज नहीं कर रहा, एक ओवरऑल बात कर रहा हूं। नमाज सारी जिंदगी नमाज पढ़ने वाले, आपको मालूम है ना? आज तक ये मसला हमारी कम्युनिटी में सॉल्व नहीं हो सका, फ्रॉम कराची टू लंदन, फ्रॉम लंदन टू लॉस एंजलिस और वैंकूवर, कि अगर कोई बैठ के नमाज पढ़े तो किस तरह नमाज पढ़ना, सिजदेगा रखना है मोहर अपनी पेशानी पे कि नहीं रखना, एक एक मिनट का क्या, 10 सेकंड का जुमला, यस या नो। आज तक आप कंफ्यूजन देख रहे हैं, मैं मसाइल तो बयान नहीं कर रहा हूं मेंबर्स, मैं तो बता रहा हूं नमाज जैसी रोजाना की जाने वाली इबादत। और ये तो चीज इसलिए मैंने कही कि ये कंफ्यूजन हर जगह है, लेकिन पहले नमाज से रोकेगा, और अगर मोमिन स्लिप हो जाए उसके हाथ से नमाज पढ़ेगा तो गलत नमाज पढ़वाएगा, खुमुस नहीं दे रहा और नमाज पढ़ रहा। और शैतान का ये तरीका हज में, अभी देखिए मैं एक रब दे रहा हूं, एक नमाज एक बेहतरीन फैमिली लाइफ। अब ये अगर अच्छी फैमिली लाइफ हो तो खुद ब खुद घर के अंदर खौफ खुदा भी आएगा। खौफ खुदा का मकसद ये नहीं कि हर वक्त बैठ के हम दुआए तौबा घर में पढ़ते रहें और हर वक्त हम जो हैं वो सजदे में पड़े रहें, नहीं, जिंदगी के आम एंजॉयमेंट लेते हुए लेकिन खौफ खुदा के साथ, यानी जहां पे एक बॉर्डर लाइन आ गई, रेड लाइन आगे रुक गया, भाई अब आगे नहीं वो हराम, बाकी जितनी भी इंटरटेनमेंट है सही है, गाना शुरू हो गया बस अब बंद। तो ये अच्छी फैमिली लाइफ, शैतान इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। चुनाच आप देखेंगे कि जितना आजकल वो हमें नमाज से रोकता उतना ही वो हमारी फैमिली लाइफ को स्पॉइल कर रहा, डिवोर्स, सेपरेशन, शौहर बीवी के झगड़े, बीवी का शौहर पे डोमिनेंस, शौहर का बीवी पे डोमिनेंस, एक दूसरे, अब ये फैमिली लाइफ स्पॉइल हो रही। और अगर फिर भी फैमिली लाइफ बच गई तो फिर शैतान का वही तरीका। हज एक ऐसी इबादत, मैं हज पे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, शायद थोड़ी सी बात शायद मैं भी कल की मजलिस में आ जाए। अब आप कहेंगे ये हज की बात मौलाना ने निकाली क्यों, एक तो वैसे ही पहले दिन से कुछ हज की बात चल रही थी, और दूसरा इसलिए कि ये जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं और ये मेरी लास्ट मजलिस का असल, यानी पूरे 10 दिन का की समरी लास्ट मजलिस में ये असल पॉइंट बनेगा कि शैतान जब देखा कि उसने सारे तरीके इख्तियार कर लिए, मोमिन ने अपनी फैमिली लाइफ को बचा लिया, शौहर ने कभी बीवी से माफी मांग ली, गलती ना हो तब भी, बीवी ने कभी शौहर के सामने सेक्रीफाइस किया, दुआ के हवाले से बात आई थी ना कि सेक्रीफाइस करना है, पहले उसके लिए दुआ मांगना फिर अपने लिए, और फैमिली लाइफ तो इसके बगैर चल ही नहीं सकती, नो फैमिली लाइफ विदाउट टॉलरेंस एंड सेक्रीफाइस। कुछ चीजें शौहर को बीवी के लिए कुर्बान करना वो हमारा हक है, वो हमारा राइट है, मगर कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी, कुछ चीजें बीवी को शौहर के लिए। और वो हदीस भी पढ़ी दूं जो पहले मैं पढ़ने के मूड में था, फिर मैंने कहा कि नहीं ये कहीं गलत फहमी ना हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसी बच्चियां और लड़कियां भी होंगे जो इन बातों से गलत मैसेज लेके जाएंगी। अभी आज तक तो सास उनके साथ रह रही है, वो कुछ खिदमत भी कर रही, अब तो कहेंगे नहीं तो हमको बिल्कुल एक फ्री परमिट मिल गया मेंबर के अंदर से, इसलिए बहुत एहतियात से बात करना पड़ती है। पैगंबर की एक बहुत मशहूर हदीस, उसमें चार बातें, यूजुअली तीन पढ़ी जाती हैं, अच्छा कुछ किताबों में खाली तीन भी हैं, लेकिन एक्चुअल हदीस में चार। तो ये एक्चुअल हदीस आपको मिलेगी उस्ताद हुसैन अंसारियान की बुक में, जो इंटरनेट के ऊपर भी उनकी अपनी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, फैमिली लाइफ इन इस्लाम, इससे मिलता जुलता उसका टाइटल है। क्या हदीस, बहुत अजीब हदीस है, और बाज़ औक़ात डर लगता है कि ऐसी हदीस इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए मुखी जी से या किसी और मीडिया वालों से कि थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम कर दें लेडीज के स्पीकर में। लेकिन बहरहाल अब वो हदीस तो हदीस है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जिब्राइल चार चीजों की इतनी ज्यादा मुझे एडवाइस करते रहे या रिकमेंडेशन देते रहे कि मुझे डर लगा ये चारों चीजें वाजिब होने वाली। अब ये एक स्टाइल होता है अरबी जबान का कोई चीज बताने का। नंबर एक मिसवाक, इतना ज्यादा, ये बहुत मशहूर हदीस कि मुझे लगा कि ये वाजिब होने वाली। नंबर दो नमाज शब, जब आते हैं या रसूल अल्लाह नमाज शब, नमाज शब, नमाज शब, मुझे डर लगा कि छठी नमाज वाजिब होने वाली, नंबर तीन पड़ोसी का हक, इतना ज्यादा कि मुझे लगा कि पड़ोसी को मीरास में भी शायद हिस्सा मिलने वाला, इतना ज्यादा रिकमेंडेशन। नंबर चार बीवी का हक, इतना ज्यादा कहा कि मुझे लगा कि बीवी को उफ कहना भी हराम होने वाला। तो फिर तो हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी अगर बीवियों को उफ ना करे। लेकिन देखिए हदीस कितनी स्ट्रांग है, इतना ज्यादा जिब्राइल आके ये एडवाइस कर रहे हैं, अहले बैत के घर में आपको मिलेगा, आका हुसैन अहले बैत के घर में। अब ये लफ्ज अच्छे नहीं हैं, लेकिन अरबी जबान क्या दुनिया की कोई जबान अहले बैत का स्टेटस बयान करने वाली वर्डिंग है ही नहीं किसी जबान में। आका हुसैन अहले बैत में भी सबसे ज्यादा जाहिद माने जाते थे, यानी दुनिया से दूर, औलाद इतनी कमी इसीलिए। मगर फरमाते हैं जिस घर में रबाब ना हो वहां पे मेरा दिल नहीं लगता, हुसैन जैसा शख्स। और अपनी बीवी के बारे में पब्लिक में इस तरह का कमेंट करे कि लोग सुने और हिस्ट्री में आ जाए। अरबईन के दिन अगर हम रबाब को याद ना करें, लैला को याद ना करें, फरवा को याद ना करें, तो अरबईन का हक ही हमने क्या अदा किया। लेकिन किस तरह याद करें कि उनकी कुर्बानियां बाद में, पहले आका हुसैन ने जो इज्जत और एहतराम इनको दिया। भाई जब फिजा के बारे में एक रिवायत है कि मौलाए कायनात एक दिन सुबह की नमाज के बाद सीधा घर आ गए, वरना यूजुअली तो नमाज पढ़ के मौला यहूदी के बाग में काम करने चले जाते, आज घर आ गए। देखा कि फिजा, वो दिन था फिजा का ऑफ, एक दिन फिजा काम करती है एक दिन शहजादी काम करती है। देखा फिजा बिस्तर पे परेशान बैठी है, कुछ सोच रहा है यार। कहा फिजा क्या बात, क्या तुम यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो तो हम तुम्हें कहीं और भेज सकते हैं। भाई एक शहजादी, फिजा शहजादी है ना, ऐसे घर में आ गई कि जहां फाके मिल रहे हैं उनको, तो अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो मदीने में है बड़े बड़े पैसे वाले सेठ सरमायादार गनी, दौलत के अंबार लगे, वहां भेज दिया जाएगा। सेम यही जुमला 10th इमाम ने अपनी बहू नरजिसे खातून से कहा था, जो जमाने के इमाम की वालिदा है, और एक दफा पहले इशारा आ गया 4th इमाम और 12वें इमाम की माओ का वाकई, यही जुमला कहा था उनसे। लेकिन पहले मौला ने कहा, फिजा ने घबरा के कहा कि मौला आप क्या कर रहे हैं, मैं कहीं और जाऊं। तो कहा तुम परेशान हो। कहा मैं परेशान सिर्फ इसलिए कि अब मैं जन्नत लेके क्या करूंगी, अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा स्टेटस दिया कि मैं इस घर में आई कि आप कसीमे जन्नत और नार सुबह आके पहले मुझे बहन कह के सलाम करते हैं, रोज आना सुबह को मेरी शहजादी जो जन्नत की औरतों की सरदार है, आज तक ऐसा ना हुआ कि मैं पहले सलाम कर पाई हूं, हमेशा फातिमा का सलाम पहले आता है। जवाना ने जन्नत के सरदार हसनैन आके अम्मा फिजा कह के मुझे सलाम करते हैं, अब जन्नत किस चीज का नाम, मैं जन्नत लेके क्या करूंगी जब एक कनीज इस घर में आके ये बन जाती है। तो रबाब फरवा लैला इनको कितनी इज्जत और एहतराम इस घर में मिला होगा। फिर उनकी कुर्बानियां देखी तो आप देखिए दो बातें हमारे सामने हैं। अली और फातिमा के रिश्ते में खौफ खुदा और इबादत की बात आई तो फातिमा ने पहल की, ये औरत की जिम्मेदारी, और इज्जत और एहतराम की बात आई तो शौहर ने पहल की है, फिर बीवी की तरफ से कुर्बानियां हमारे सामने आई, ये दोनों की जिम्मेदारियां बन गई। शौहरों को ऐसा बनना है, बीवियों को ऐसा बनना, हर जगह पे बैड कैरेक्टर होते हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो करबला अरबईन चेहलुम खवातीन उनके हवाले से बात, अब यहां पे शैतान ये बर्दाश्त नहीं करेगा, वो हमारी नमाज अगर न रोक सके तो नमाज को गलत करवाएगा, अगर वो हमारी फैमिली लाइफ को बर्दाश्त न कर सके तो पहले शौहर को बहकाएगा, ये औरत किस बात पे अकड़ रही है, ये औरत किस बात पे इस तरह है, तुम शौहर हो 10-12 हदीसें सुना के इसको दबा दो, कभी औरत को बहकाएगा, अरे ये क्यों तुम पर हुक्म चला रहा है, तुम एक फ्री कंट्री में हो, अभी कॉल करो पुलिस आके इसको अच्छे तरीके से सबक सिखा देगी, है ना, कभी इधर कभी उधर। और फिर भी अगर नाकाम हो गया शैतान, शौहर ने भी शरीयत के मसाइल को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं किया, और बीवी ने भी इख्तियार रखने के बाद वॉलेंटियरी सरेंडर कर दिया। तो अब उसका एक तरीका ये जो हम दुश्मनान अहले बैत के लिए कहते हैं, उस स्टेज पे तो नहीं लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल पे हमारे आ गया। वो क्या, हज इस्लाम की एक वाहिद इबादत जिसमें शौहर और बीवी एक दूसरे पे हराम हो जाते हैं, हज और उमरा। और इस तरह हराम होते हैं कि सिर्फ वो नहीं जो करंट हैं, बल्कि अगर अभी शादी भी नहीं हुई है और एहराम पहन लिया उसने तो फ्यूचर की शादी भी हराम है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। मैं सारे मसाइल नहीं बता रहा हूं, एक आध वर्डिंग अत्तसामो के अंदाज से सुनिएगा। तो खुलासा यह है कि यह वो वाहिद इबादत कि अब अगर हराम हो गया हज और उम्रे में ये रिश्ता, खाली इस वक्त का नहीं, अब शायद अंग्रेजी में ये कहते हैं, ये लफ्ज के बारे में मैं खुद डाउटफुल, वुड बी जो शादी होने वाली है वो भी हराम हो गई जब तक के हज को सही तरीके से कंप्लीट ना करे और उम्रे को सही तरीके से कंप्लीट ना करे। अब यहां पे शैतान गड़बड़ करता बाद लोगों पर, तो इस अंदाज से परमानेंट हराम कर देता है। हमारे यहां भी हज और उम्रे को अगर जरा भी आपने लापरवाही या केयरलेस बन के अंजाम दिया तो जो शौहर और बीवी हराम हुए हैं वो फिर हलाल नहीं होंगे। अब जो वापिस आए हज करके, ना मैं हज से किसी को रोकना चाहता हूं। रावी इमाम के पास गया, कहा मौला मैं बहुत बीमार हूं और बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल कर ली और डॉक्टर के पास गया, मुझे शफा नहीं मिल रही। इमाम ने कहा ऐसा तो नहीं था कि कोई तुम्हारे पास हज के लिए मशवरा लेने आया हो और तूने उसको हज से रोक दिया कि भाई हज पे मत जाओ, तुम पर हज वाजिब नहीं है या ऐसी हालत में हज नहीं करना। कहा कि हाँ मौला मेरी फैमिली में एक केस था। कहा ये उसकी दुनियावी सजा, तो मैं वैसे तो सेहत और मौत अल्लाह के हाथ में है लेकिन मैं इस वक्त फिलहाल मूड में नहीं हूं कि मिंबर से उतरते ही बीमार पड़ जाऊं, तो मैं किसी को हज से नहीं रोक रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फिर वो शैतान से अलर्ट होकर हज करें, सही हज करें। आजकल ऐसी गलतियां हो रही, मसलन मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं घड़ी देख रहा हूं, बहुत बड़ी घड़ी है, अंधे को भी नजर आ जाए, तो इसलिए मैं देख रहा हूं और बिल्कुल खत्म आखिरी जुमले। आज तो मातम की रात, सही मानो मैं आज तो मातम की रात और कल का दिन मातम का दिन है, हमारे इस लेक्चर देने का या भाषण देने का दिन नहीं है, तो बस बिल्कुल आखिरी लम्हे। और वो ये मसलन आज कल क्राउड ज्यादा होने की वजह से हज और उम्रे के जो अहम वाजिबात है सबको मल्टी स्टोरीड कर दिया गया। इंग्लैंड में पढ़ रहा हूं वरना अमेरिका में लोग कहते नहीं मौलाना मल्टाई पढ़िए, मल्टाई मल्टी को छोड़िए, लेकिन असल कि आप मसलन तवाफ तीन चार लेवल हो गए, सही तीन चार लेवल हो गए, शैतान को कंकर मारना तीन चार लेवल हो गए। और इसमें मैंने ऐसी गलतियां लोगों की देखी कि तवाफ इनवैलिड, सही इनवैलिड, शैतान के कंकर इनवैलिड। याद रखिए पहले दिन शैतान को अगर गलत कंकर मारे गए तो एहराम नहीं उतरेगा, क्योंकि एहराम जो हज का उतरता है पहले दिन शैतान को कंकर, फिर कुर्बानी, फिर सर शेव, फिर एहराम उतर। दूसरे तीसरे दिन के कंकर में गलती हो गई तो गुनाहगार है, लेकिन शौहर बीवी वो सारे मसाले वो हलाल हो जाते हैं। तो ये जो कई कई मंजिल मल्टी स्टोरी, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, लेकिन इसे एक तरफ रखिए। बहुत छोटी सी एक बात कह दूं, टाइम बहुत गुजर गया, और वो ये तवाफ में मैंने देखा बिल्कुल सही तवाफ ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल खाने काबा के करीब। अब वहां तवाफ शुरू किया, वाजिब तवाफ की बात है, सुन्नत तवाफ की बात नहीं, बी केयरफुल, सुन्नत तवाफ तो आप जब चाहें तोड़ सकते हैं। तवाफ शुरू किया, दो चक्कर हमने लगाए, सात में से दो, फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि हमें अपने तवाफ के बारे में डाउट हो गया, धक्का लगा था, कंधा हट गया था, शायद पूरा प्रॉब्लम हुआ था। हमने कहा चलो दोबारा से ही तवाफ करते हैं, अच्छी बात लग रही, बिल्कुल श्योरिटी हासिल करने के लिए जो दो राउंड या एक राउंड उसको छोड़ दिया, कैंसिल किया, दोबारा गए हजरत अस्वद के पास, तवाफ शुरू किया। ये गलत हो गया, क्योंकि तवाफ शुरू करने के बाद आप अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते, वो माना जाएगा कंटिन्यू। अब आपने कहा कि नहीं भाई ये दो राउंड थे या वन एंड ए हाफ राउंड, दिल सेटिस्फाई नहीं है, इसमें कुछ धक्के बहुत लगे, दोबारा करो। दोबारा आपने किया, सात राउंड लगाए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपने नौ राउंड लगाए, क्योंकि वो जो दो आपने शुरू में लगाए थे वो इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएंगे, और सात तो आपने किए, नौ हो गए। और तवाफ में सात से कम में भी गलत, सात से ज्यादा में भी गलत, और ये बहुत लोग करते हैं, और ये वो लोग करते हैं जो बड़े केयरफुल होते हैं, जरा सी गलती ना होने पाए। फिर उसका एक तरीका है कि अगर ऐसा हो तो क्या तरीका, उसका तरीका यह है कि आप मस्जिद से बाहर जाइए और वापस आइए, 15 मिनट का गैप दें और नया तवाफ शुरू करें। वो पहले दो जो राउंड हैं वो नए तवाफ का पार्ट ना बने, मवालात को बीच में तोड़ना है, ये टेक्निकल जबान का लफ्ज हो गया। अब अगर ये गलतियां हुई, बेचारा ला इल्म था, लैक ऑफ नॉलेज, अल्लाह की तरफ से माफी भी हो जाएगी, मगर जो इफेक्ट आएंगे कि बीवी हराम है तो वापिस आके हराम रहेगी, शौहर हराम है तो वापिस आके इस खातून पे हराम रहेगा, उनके जहन में तो कंसेप्ट नहीं है ना, वो तो समझ रहे हैं कि हमने सही हज और उमरा किया, दोबारा ये रिश्ता हलाल हो गया। ये शैतान का वो तरीका जिस पे मजीद बात कल होगी। और ये गलतियां मैंने बहुत कॉमन देखी, खास तौर पर ये आखिरी वाली गलती तो बहुत अरसे से है, जब ये मल्टी स्टोरी का भी प्रॉब्लम नहीं था। तो इसका सोल्यूशन क्या, इसका सोल्यूशन है नॉलेज गेन करें। और करबला के जिहाद का मकसद क्या है, नॉलेज बढ़ाई। बस ये जुमला बहुत मेरा अहम है कल की मजलिस के लिए, आखिरी जुमला सुनी जो मेरे टॉपिक और मसाइब को मिलाने वाला। करबला के जिहाद में तीन बहुत ही अहम हमारे सामने कैरेक्टर आते हैं या पर्सनालिटीज, आका हुसैन, शहजादी जैनब, आका सज्जाद। करबला के जिहाद में ये तीन पर्सनालिटीज, हुसैन के जिहाद का मकसद क्या है, आप कल अब इसी सेंटर में खड़े होकर कहेंगे कि मौला मैं गवाही दे रहा हूं, बल्कि आप अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह मैं गवाही दे रहा हूं, ले यस्तन कजा इबादक मिन अल जिहालत वल हैरत वलाल। हुसैन ने यह सारा जिहाद और सेक्रीफाइस इसलिए किया कि तेरे सारे बंदों को इग्नोरेंस और जिहालत से हटाया जाए। हुसैन के जिहाद का मकसद इल्म, करबला का जिहाद। दूसरी अहम तरीन पर्सनैलिटी कौन सी है, जैनब, अंती आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, फूफी अम्मा आप तो वो इल्म रखने वाली हैं कि किसी ने आपको इल्म नहीं दिया, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा। जैनब की सबसे बड़ी सिफत, भाई जैनब के बाकी जितने फजाइल हम पढ़ते हैं, ये फजीलत इमाम मासूम ने बयान की है, चौथे इमाम ने। और तीसरी शख्सियत कौन है करबला में, सज्जाद। सज्जाद इज द ओनली इमाम अमंग 12 इमाम जिनकी इमामत मसाला शरी से शुरू हुई थी। खेमे जल रहे हैं, आग बढ़ती जा रही है, सैदानियां परेशान होकर कहती हैं, शहजादी जैनब ये बताइए हमारी ड्यूटी क्या। कहा कि मेरा बेटा सज्जाद इमाम वक्त है, पहले उससे पूछूंगी। सज्जाद की इमामत कहां से शुरू हुई, इमाम बनने के बाद सज्जाद का पहला अमल हमारे सामने क्या आया। फूफी जाती हैं और कहती हैं, सज्जाद तू मेरे जमाने का इमाम है, तेरी फूफी तुझसे पहला मसला ये पूछने आई, अब हम क्या करें। जब सज्जाद ने कहा अलैकुन नबिस सहरा, फूफी अम्मा पर्दा माफ हो गया, घर को लेके जंगल में निकल जाइए। ये किसी एक मर्जे से आम आदमी मसला नहीं पूछ रहा, गैरतमंद सज्जाद से मसला पूछ रही है गैरतमंद जैनब। किस दिल से सज्जाद ने कहा होगा, फूफी अम्मा अब बगैर चादर के ना महरूमों में चले जाइए, कयामत है सज्जाद के लिए ये मसला, मगर हुक्म खुदा भी बताना। तो हुसैन हो, जैनब हो, सज्जाद हो, करबला के जिहाद की ये तीनों शख्सियतों में आपको कॉमन फैक्टर यही प्रोमोशन ऑफ नॉलेज नजर आई। हाँ हाँ, अहले बैत करबला की जानिब चले, यहां तक मसाइब आज पढ़ना, करबला पहुंचे ये मसाइब मुझे कल जोहर की मजलिस में पढ़ना, दो हिस्सों में मसाइब होंगे। ट्रेवलिंग स्टार्ट हुई टुवार्ड्स करबला, ये आज के मसाइब। हां, सज्जाद ने जैनब के मसले का जवाब तो दे दिया, मगर दुश्मन को एक चांस मिल गया। वो कह सकता कि अजीब है आप शिया, जैनब कुबरा के इतने बड़े स्टेटस को बताते हैं, वो एक छोटा सा मसला नहीं जानती हैं कि आग लग गई हो तो पर्दा माफ हो जाता। हम कैसे माने कि जैनब के इतने फजाइल, जो संडे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो मसाला जानता, जब जैनब को इतना सा मसाला नहीं पता तो हम जैनब की फजीलत कैसे माने। जैनब ने यह मसाला पूछकर अपने स्टेटस को खतरे में डाल दिया था। मसाला भी पूछना जरूरी था, नॉट फॉर मसाला सेक, यह बताने के लिए कि अब मेरा बेटा इमाम वक्त है। असल में सज्जाद की इमामत का ऐलान करना था, बेटा अब तू मेरा इमाम है, अब तू बता, यह असल जुमला था। मगर सज्जाद की इमामत का ऐलान, अली की इमामत का ऐलान गदीर खुम में रसूलुल्लाह ने किया, और सज्जाद की इमामत का ऐलान जलते हुए खेमे में जैनब कुबरा ने किया। ये सज्जाद का गदीर खुम है कि आग लगी है और बहनों और फूफियों के बाल खुले हैं और सज्जाद मसाला बता रहा। जैनब ने सज्जाद की अजमत बताने के लिए मसाला पूछा। सज्जाद को भी मालूम कि मेरी फूफी ने यह मसाला पूछकर अपनी अजमत को खतरे में डाला, सज्जाद की जिम्मेदारी है। चुनाचे जब कल वो वक्त आया कि यजीद को अपनी गलती रियलाइज हुई, किसी और कॉन्टेक्स में, खौफे खुदा से नहीं, पॉलिटिकल गलती कि मेरा इख्तदार खतरे में है, एक बार दरबार में सज्जाद को बुलाता। मौला सज्जाद कैद खाने में है बीबियों के साथ, गुलाम आता है और कहता है कि यजीद ने बुलाया। जैनब कुबरा ने देखा मेरा भतीजा अकेला जालिम के दरबार में जा रहा है, लिपट गई। सज्जाद, हुसैन तुझे मेरे हवाले कर गया, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा, आज किसी और काम के लिए बुलाया है, आज आप फिक्र ना करें। बस इतना कहा इमाम ने, जैनब खामोश। सज्जाद दरबार में आए, आज यजीद का स्टाइल बदला हुआ, खड़े होके इस्तकबाल कर रहा, तख्त पर अपने बराबर में जगह छोड़ता है, कहता है फरजंदे रसूल, आज ये कह रहा है, आइए यहां बैठ। सज्जाद की निगाह तख्त पर पड़ी, आंखों में आंसू आ गए, दो कदम पीछे हट गए। यजीद, इस तख्त पर मैं तो नहीं बैठ सकता। पूछा क्यों? कहा ये वही तख्त तो है जिसके नीचे कल मेरे बूढ़े बाबा का कटा हुआ सर ला के रखा गया था। भाई यजीद ने जुमला सुना घबरा गया, कहा फरजंदे रसूल पुरानी बातें भूल जाइए, मैं आपको रिहा करता हूं। दो बहुत अजीब जुमले सज्जाद ने कहे। कहा यजीद, एक जुमला, करबला से लेकर आज तक मैंने फूफी जैनब के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं किया। मैं पहले जाके फूफी अम्मा से पूछूंगा, जो जैनब कहेगी वो मेरा जवाब होगा। कल करबला की जलती आग में सज्जाद का रुतबा बताने के लिए जैनब ने सज्जाद से सवाल पूछा, और आज बाजार, आज दरबार शाम में सज्जाद ने अजमत जैनब बताई। पहचानो अजमत को, अजमत वो है कि इमामत जैनब का इंतजार करती, इमामत जैनब से गाइडेंस लेती है। जैनब के पास आए, फूफी अम्मा आज यजीद हमको रिहा कर रहा। कहा यजीद से कह दो कि हमारी तीन कंडीशंस हैं, वो मानेगा तो हमें रिहाई चाहिए, वरना नहीं रिहाई चाहिए। आज यजीद हर शर्त मान रहा। देखिए यही फैसला हो गया, जीतने वाला कंडीशन लगाता है, हारने वाला कंडीशन नहीं लगाता। कंडीशन यजीद ने नहीं लगाई, कंडीशन जैनब ने लगाई, और कहा कि हमारी पहली शर्त ये, जब से हमारा घराना करबला में मारा गया, मैं दिल खोल के अपने घर का मातम नहीं कर सकी, हमें एक मकान लेके दिया जाए जिसमें हम अपने लुटे हुए घर का मातम करें। ये कौन जैनब कह रही है? अशराय जैनबिया की पहली मजलिस याद कीजिए, मसाइब में मैंने वो रिवायत पढ़ी थी कि जैनब बैठ के नमाज शब पढ़ती हैं और सज्जाद को जवाब देती हैं कि आने वाली गिजा और पानी इतना कम है कि मैं अपना हिस्सा बच्चों को दे देती हूँ। यानी जैनब और जैनब के बच्चे बहुत प्यासे हैं। जैनब को पहली कंडीशन लगाना चाहिए थी, हमें पानी चाहिए। जैनब ने कंडीशन लगाई कि मैं प्यासी हूं, लेकिन पानी की प्यास नहीं है। कहा कि मुझे आजादारी करना है, कहा कि मैं आंसुओं की प्यासी हूं, मैं मातम की प्यासी हूं। जैनब ने बताया, मैं पानी के बगैर रह सकती हूं, भैया के मातम के बगैर नहीं रह सकती। यजीद ने शर्त कबूल कर ली, एक मकान दिया गया। दूसरी शर्त यह थी कि करबला में हमारे घराने की शहादत के बाद हमारा सामान लूटा गया, सारा सामान वापस किया जाए। ये शर्त भी कबूल है, और इस घर में सामान आने लगा, एक एक करके सामान आ रहा। सबसे पहले अब्बास का आलम आ गया। जैनब ने अब्बास का आलम लिया, सज्जाद बेटा इस घर की छत पे मेरे अब्बास का आलम लगा, जैनब आलम के नीचे बैठ के अपने घर का मातम करेगी। अलम अब्बास के साए तले मातम शुरू हो रहा, और फिर जो तबर्रुकात आए लूटे हुए, तो आखिर में एक ऐसा लहू भरा हुआ कुर्ता नजर आया जिसे दूर से देखते ही जैनब ने चीख मारी, आंसू बहाए। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा पूरा खून में भरा हुआ कुर्ता है, क्या आप इसे पहचानती हैं? जैनब ने कहा, सज्जाद मैं इसे ना पहचानूं? अरे मैं बहुत छोटी थी जब मदीने में मेरी माँ फातिमा जहरा ये कुर्ता सीती जाती थी, रोती जाती थी। मैंने पूछा, अम्मा आप ये कुर्ता सीते हुए क्यों रो रही हैं? कहा, जैनब बेटी जब मेरे लाल के गले पर खंजर चलेगा मेरा हुसैन यही कुर्ता पहने हुए होगा। और हमारी तीसरी शर्त यह है, हमारे शहीदों के कटे हुए सर वापस किए जाएं। ये शर्त भी मानी गई, कटे हुए सर आए, जो कटा हुआ सर आता है उसकी वारिस भी आगे बढ़ती है। कासिम का कटा सर आया, फरवा तड़प के आगे बढ़ी, ऐ मेरे लाल माँ ने तेरी जियारत कब से नहीं की है। शबीह रसूल अकबर का कटा सर आया, लैला तड़प के आगे बढ़ी, आ मेरे 18 साल के दिलबर माँ तेरा इंतजार कर रही है। अब्बास का कटा सर आया, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, मेरा भैया अब्बास। बस जरा ये बताइए, जब असगर का नन्ना सा कटा सर आया होगा, अरे रबाब ने किस तरह ये सर अपनी गोद में लिया होगा। और जब आखिर में एक सर नजर आया, आखिरी सर आया, सारी बीबियों ने अपनी अपनी गोद के सर खाली किए, एहतराम में अपनी जगह से खड़ी हुई, उस कटे सर का रुख किया, ये हुसैन का कटा सर है। और सारी बीबियों ने बस यारत पढ़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। इंशाल्लाह कल अरबईन को आप भी इसी तरह अपने आका को सलाम करेंगे। जैनब ने आगे बढ़ के ये कटा हुआ सर लिया। मेरे मरहूम उस्ताद एक जुमला कहते थे वल्लाह आलम कि जब ये सारे सर ले ली, अब शाम की औरतें आने लगी और अहले बैत को पुरसा दे रही हैं, मगर एक बार कुछ औरतें फरवा के पास बैठी, तो कुछ लैला के पास, तो कुछ रबाब के पास, तो कुछ कुलसूम के पास, तो कुछ जैनब के पास। शामी औरतों की निगाह पड़ी, एक कोने में दो कटे सर ऐसे हैं जिन्हें गोद में लेने वाला कोई नहीं है, एक औन का सर था, एक मोहम्मद का सर था। शामी औरतों ने कहा, ऐसा लग रहा है ये बच्चे लावारिस हैं, इनका मातम करने वाली इनकी माँ जिंदा नहीं है। मेरा मजलूम आका सज्जाद आगे बढ़ा, अरे ये ना कहना मैं इनका वारिस हूँ। जैनब ने देखा, आवाज दी, सज्जाद बेटा इन सरों को हाथ ना लगाना, ये मैंने अपने हुसैन पे सदका कर दिए हैं। आनो मोहम्मद के सर माँ ने भी गोद में न लिया, जैनब की गोद खाली कहाँ। 3 दिन मातम हुआ या 8 दिन मातम हुआ, बस आपकी जहमतें तमाम हुई। एक बार ये काफिला तैयार हुआ, अब सैदानियों को करबला जाना है, बाकी मसाइब कल सुनिएगा, सिर्फ 2 जुमले। अब इस काफिले को करबला जाना है, सवारियां आ गई। सज्जाद घर में आए, फूफी अम्मा आइए, सवारियां आ गई हैं। जैनब बाहर निकली, देखा आज महमले हैं, आज अमारियां हैं, और ऊंटों पर जो अमारियां हैं रेशम और दीवा के पर्दे लटक रहे हैं। बस जैनब की निगाह पड़ी, बेख्तियार वापस आ गई। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा क्या हुआ? कहा, बेटा सज्जाद अब जैनब रेशमी कपड़ों में बैठने के काबिल न रही है, ये कपड़े हटाए जाएं, ये पर्दे बदले जाएं, काले पर्दे लटकाए जाएं, काले पर्दों में बैठ के जैनब जाएगी। और बस आज का आखिरी जुमला सुनिए, ये हमारियां चली, ये काफिला चला, ये शाम के दरवाजे की जानिब जा रहा। जैनब ने आवाज दी, सज्जाद बेटा कहाँ जा रहा? कहा, पप्पी अम्मा हम अपनी मंजिल की जानिब जा रहे। कहा, नहीं सवारियों का रुख फेरो, पहले कैद खाने की जानिब जाओ, मेरी ये अमानत तो इसी शाम में है। ऊंटों का रुख फेरा गया, वो कैद खाना नजर आया, जैनब ने अपने आप को ऊंट से गिराया। सकीना की नन्नी सी कब्र, अंधेरा जिंदान, सकीना की कब्र। एक बार कब्र पे हाथ रख के जुमला कहा, सकीना बेटी तेरी फूफी बड़ी शर्मिंदा है, मदीने से और करबला से लेके आई थी, शाम में अकेला छोड़ के जा रही है, मगर सकीना ये तेरी फूफी का वादा है, मैं वापिस शाम में आऊंगी, कयामत तक अपनी सकीना के साथ रहूं। खुदाबंदा अहले बैत यथार के मसायब का वास्ता आज की मजलिस में जो मोमिनीन और मोमिनात हैं इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदाबंदा हमें मरते दम तक कयामत जन्नत में भी हुसैन का आजादार और मातमी बना के दाखिल फरमा। दुनिया भर के साहिबान ईमान की हिफाजत फरमा। इन मोमिनीन की हाजतें पूरी फरमा। जहूर इमाम में ताजील फरमा।